so many temporary relationships, but actually all these relationships, they are very much unreal. Or just like an animal. Sometimes an animal is sold to one master, a human being, and the human being is thinking, oh, this is my animal, this is my property, belongs to me. But then again, that animal is sold to another master, and the previous master forgets, oh, this was my possession. So in this way the boy spoke. And then finally at the end, he simply left that place, and all of the persons present, Maharaj Rishikesu, his wife, and all the residents of the palace, they became very serious. And from this incident, they could understand very clearly that that this son was actually not truly their own son, not their relative, and they were able to cut off this shackle which was binding their heart and causing them to have such strong affection for this son. So, after this, Maharaj Chittaketu was also given very good instructions by Naradji, and he became a very great devotee, very great Vaishnava. In fact, he was able to have darshan of Anantadeva, of the Supreme Lord. He was able to have direct darshan of him by the mercy of Narada. And later on, the same King Chittaketu was flying in an airplane with so many damsels of the heavenly planets, and they were performing some kirtan of the Supreme Lord Hari. And as they were flying, they came upon an assembly where Lord Mahadev Chief was sitting, and surrounded by many, many sages and saintly persons, and this is a very knowledgeable assembly. And when he looked down, he saw that actually in his lap, Parvati was being embraced by him and sitting in his lap. So this Chitraketu, he looked down upon this, and he began to laugh, and he began to say, oh, who is this Mahadev? He is actually the most renowned personality. He is such a great sage, has done so much tapasya, and upstairs he's been worshipable by all, but yet it appears that he is attached like any ordinary person. He has his wife there with him in his lap. So he began to laugh in this way, and Parvati became very disturbed by this laughter. And she considered that he was committing a very great offense by laughing in this way towards Lord Shiva. And she cursed Chittaketu that, so you are going to cause offenses against great personalities, then I curse you that you will take birth as a demon, and in that place you will have no association with great stately persons that you can offend. So this way, Chittaketu Maharaj, because he was a very great devotee, and he was actually a realized soul, he accepted this curse upon his head very happily. And by this curse, later on, it was in this way that Chittaketu Maharaj took birth in the form of Dhritarasura, the very great demon. So within this great epic story, history from the Vedas, we can learn so many great instructions, and we can understand the temporary nature of this world, and how actually the only thing worth endeavoring for within this human form of life is to reconnect ourselves with our eternal relationship with the Supreme Personality of Godhead, Sri Bhagavan, Sri Krishna. If we do this, then our human form of life is successful. But if we neglect this, then it is such a great waste. Because this human form of life has come after many millions of lifetimes. We should understand this. And if we just have one moment of awareness of this fact, then we can adapt the process in our lives by which we can attain perfection. And by associating with very great devotees, by hearing from them this transcendental knowledge, our hearts will become purified, all of our illusion will become dispelled, and we will again be able to regain our eternal position as eternal servants of the Supreme Lord. Hare Krishna.
और वो प्रार्थना करते हैं भगवान से, हे प्रभु मैं वाणी के द्वारा आपका ध्यान बात कर सुने और शरीर के पांच इंद्रियों से आपकी सब समय सेवा में नियुक्त रहूंगी। कहते इसके लिए उदाहरण उन्होंने दिया, जैसे बच्चा पशु पक्षी उसके पंख नहीं उगने पर भी मैया के लिए सब समय चिंतन करता है, मैया कब आएगी, माँ तुझे कब खिलाएगी। और बछड़ा गाय का जब गाय चरने के लिए जाती है तो शाम को भूखा हो जाता है, उसमें अपने मैया को पुकारता है बड़े जोश से, ये बछड़े जैसा मैं पुकारूं और पक्षी जैसा मैं सब समय आपका चिंतन करूं, और जैसे प्रिया अपने विदेश परदेशी अपने प्रियतम के लिए जिस प्रकार से चिंतन करती है, उसका गुणगान करती है और आने पर उसकी सेवा करती है, उसी प्रकार से मैं तन से मन से वचन से शरीर से सब प्रकार से आपकी सेवा करूं, अपने लिए कुछ नहीं। इसलिए इस स्थिति को उपाख्यान दिलाया और दिखलाया, संसार में आदमी जब तक भगवान का भजन नहीं करेगा सुखी नहीं जा सकता, पुत्र के पिंड देने से भी पिता का कल्याण नहीं होगा, दूसरे के करने से कुछ नहीं होगा, अपने भगवान का भजन करना होगा। ये सब साधारण रूप में हम लोगों ने करता है। अब दूसरा एक चरित्र आता है भागवत में, बहुत ही सुंदर महाराज भरत जी का। और ये हम लोग सोचते हैं कि एक पिता का पुत्र ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा, जब आप ठीक नहीं, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय ही होगा, वैश्य का पुत्र वैश्य ही होगा, ब्राह्मण का पुत्र अत्यंत दुराचारी होने पर भी वो ब्राह्मण ही रहेगा। तुलिय विप्र ज्ञान गुण जीना सुचिता का एक जो उपाय है, इसका लोग गलत अर्थ लेते हैं। गीता में बताया गया चतुर्वर्ण गुण कर्म भाग, गुण और कर्म से ये जातियां बनी थी हमारे भागवत के कल्याण के लिए, बड़ी सुंदर पद्धति थी। अब हम लोगों ने उसे ऐसे बिगाड़ दिया कि जब हमारा कल्याण होना बड़ा मुश्किल, इसको एकदम भ्रष्ट कर। पहले गुण के अनुसार में और दुर्गता के अनुसार में भगवान इसी बात से वो ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मण का पुत्र यदि गुण हो तो ब्राह्मण आ जाएगा। राम का पिता विशेष प्रवाता वो ऋषि और ब्राह्मण था, किंतु राक्षस कैसे हो गया, उसको ब्राह्मण का सम्मान नहीं दिया गया। दूसरी बात, एक बेटा की उसका लड़का था जवाला नाम है, वो एक ऋषि के पास में पढ़ने के लिए भेज अध्ययन के लिए गया। ऋषि ने कहा बेटा तुम कौन से गोत्र के हो, मैया से पूछा ना तुम तो वो गया मैया से पूछा कि हमारे पिता का गोत्र क्या था, हमारा गोत्र क्या है। ऋषि पूछ रहे हैं भेज अध्ययन करने के लिए, हमको उपनयन देकर के तब वो पढ़ाएंगे। मैया ने कहा देखो मैं युवा अवस्था में हमारे पास में बहुत से पुरुष आए और तुम किसका बेटा है मैं नहीं जानता, तुम ऋषि के कारण जब मैं जबाला का पुत्र हूँ, मेरी बढ़िया का नाम जबाला है, मैं उसका पुत्र पर के कहा। वो चीज से याद करके सबसे बात उन्होंने कह दी, महाराज हम मैया ने हमारा कहा है कि युवा अवस्था में बहुत से पुरुष और लोग आए, किससे तुम जानना मुझे पता नहीं है, तुम ये ऋषि के कारण कि मेरे बढ़िया का नाम जबाला है और उन्हीं का मैं ऋषि पूर्ण करके बड़े प्रश्न होंगे। ओ ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई भी सत्य बात नहीं है, इसे तुमने ऐसी बात को भी सत्य हमसे कहा इसे जरूर तू ब्राह्मण पाल है। उन्होंने उसको बने देकर के कहा कि तू ब्राह्मण है और तेरे दर्शन ऐसे गुण और दुर्गता देखी जाती है। सतत ऐसे बातें बहुत इसके प्रमाण है,
son con dice todo
Bharat
unke pita ji ka naam Rishabh dev tha unke ek putr the jisme 900 aise jubilant hue कि जाति पाति से तथा ऊपर क्रम ज्ञान की बात परम भाव कर्म भवि अंतरित किया और एक भक्त जो हुए ये भाग भक्त के अधिकतर क्षत्रिय हुए और एकाकी जो हुए वे स्मार्ट ब्राह्मण कर्मकांडी जो ब्राह्मण लेंगे और नौ उसमें जो बचे वो नौ वर्षों के मालिक क्षत्रिय हुए एक पिता के बहुत से पुत्र बहुत से जाति के लिए कहते हुए ये तो भागवत में लिखा है रामायण में लिखा है शास्त्रों में लिखा है इसे गुण और कर्म के अनुसार जब कोई ब्राह्मण कुल में जन्म होकर के भी उसका गुण ब्राह्मण का नहीं है तो ब्राह्मण का सम्मान पान करते नहीं चमार मोती का काम करता है चमार का चाम का काम करता है शराब पीता है आराम कहता है तो दुष्ट देश उसको ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता किसी भी जाति में भी होकर तो उसमें सब गुण हो यथार्थ में और भगवान का भजन करता है तो उसको शुद्ध कुल में ज्ञान देने पर भी उसको बहुत सुंदर स्थान दिया जाएगा यह ब्राह्मण का भी गुरु हो सकता है व्यास जी कौन जाति के थे नारद जी कौन जाति के थे शुक्राणी के दर्द से तो पैदा हुए नारद व्यास जी भी एक अस्परा के पेट से वो निकले थे इसलिए ज्ञान के ऊपर में योग्यता के ऊपर में ही ये सब जातियां थी इसलिए भरत महाराज के पिताजी के इतने पुत्र होने पर भी कोई नहीं संदेह नहीं था इसमें भरत की जो थे बहुत ही योग्य और भगवत भक्ति के संपन्न थे क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मणों के भी ये गुरु समुदाय थे इनके विषय में कैसा उनका चरित्र कैसे है इसमें शुभानंद ब्रह्मचारी जी संक्षेप में बतलाए सरल रूप से बतलाएंगे तुलसी दास जी ने कहा है पूज्य विप्र ज्ञान गुणहीना इसका तात्पर्य बहुत सी बात है शास्त्रों में विप्र किसे कहते हैं ब्राह्मण किसे कहते हैं दिव्य किसे कहते हैं यह सब दिया गया एक जगह पुराण में लिखा है जन्म जायते शूद्र जन्म से सभी लोग शूद्र होते हैं कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं और संसारा विज्ञते गुरु के द्वारा पुरोहित के द्वारा जब उसका उपनयन इत्यादि संस्कार होता है तो उसको दिव्य कहते हैं ये ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय इन तीनों का ही संस्कार होता है इसलिए सभी दिव्य हैं किंतु वेद पाठा भविष्य वेदों का अध्ययन करने वाला जो है संस्कार के बाद में पहले हुआ संस्कार बीज बना इसके बाद में क्या हुआ वेद पाठ अध्ययन करने लगा तब हुआ ये पित्र और अंत में ब्रह्म जाना भी ब्राह्मण जो ब्रह्म को जान करने वाला है ब्रह्म में विचरण करने वाला है उसको कहते हैं ब्राह्मण यहाँ पर पित्र आने यदि कोई जिसका संस्कार हो चुका है और जो वेद पाठ भी करता है किंतु ब्रह्म नहीं जानता है कोई भी बात नहीं जानेगा इसलिए ऐसे विप्र को भी आदर कर यहाँ पर ज्ञान गुण ही ना करिए इसलिए ब्रह्म अभी नहीं अनुभव कर सका है किंतु सदाचार संपन्न है पहला और दूसरा संस्कार भी हो चुका है किंतु वो ब्रह्म नहीं जानता है ब्राह्मण भी नहीं हुआ है ऐसे भी आदमी को जो कि उसके लिए चेष्टा कर रहा है उसका आदर करना चाहिए तो उसी दास के विचारों का ये साथ नहीं तो वो राम को राक्षस क्यों कहते क्यों कहते
राक्षसंद्र कृष्णाय कृष्णवत्साय सर्वत्राय नमो नमः सर्वप्रथम
அர்ஜுனுடைய குரு பார்ப்பதும் அர்ஜுன் சுகோதரியை தெரிந்து சந்திக்கிறதும் இருந்தார். தகனந்தரும் பார்த்து கூறிய வைஷ்ணவர்கள் சமஸ்த தெரிஞ்சனும் மாதாய வேணும் சொத்து யசாயத்திற்கு ஆரம்பித்தார். அது அதை ஆசை படித்தாசை விசாரம் செய்திருப்ப கதாவும் ஒரு தவணை கியாரே சில மகாராஜனை ஆகியா இருந்தேன் कि भरत जी के कुछ कथाओं को प्रस्तुत करें। आपने अभी सुना है कि भारतवर्ष में ऋषभ देव के पुत्र महाराज भरत की जिनके नाम से यह भारतवर्ष हुआ है, बहुत बड़े प्रतापी राजा जो इतने बड़े विशाल पृथ्वी के राजा बने, समस्त देश का शासन करने लगे, परंतु युवा काल आते ही उन्होंने समस्त राज्यपाल सब परित्याग कर दिया, भगवान की आराधना करने के लिए चले, पुनः आश्रम में जाकर के अपने भजन साधन करने लगे, गंडकी नदी के लिए अपना एक आश्रम बनाया वहीं और भजन साधन करने लगे। प्रतिदिन नदी में स्नान करते तो वहां से भालुकाम किला को उठा के लाते और प्रतिदिन उसमें जल देकर के स्नान कराना, तुलसी देना, इस प्रकार पूजन करते भजन करते करते भाव दशा में पहुंचे थे। एक दिन भजन में बैठे हुए थे, ऐसे समय में ये हिरण पानी पीने के लिए नदी में उतरे, ढक ढक करके पानी पी रहे थे। ऐसे समय में एक शेर ने पीछे से आया और बड़े जोर से दहाड़ मारा, उसके दहाड़ से उसके गर्जन से अब हिरण का खाद्य का दल कर गया, डर के मारे पानी में जैसे छलांग लगाई, उसके पेट में बच्चा था और वह बच्चा साथ ही साथ खलित हुआ जो पानी में डूबने उतर गया। हिरण तो किसी तरह से पानी पार करके उस पार निकल गई और जाकर के कुछ दूर में शरीर छोड़ दिया। यह बच्चा जो था जन्म मात्र पानी में डूब रहा कर रहा है। भरत महाराज जी ने देखा, देख करके उनके प्रति उसके प्रति दया कि इस हिरण के बच्चे को उठाना चाहिए, इसको बचाना जरूरी है। साथ ही साथ गए पानी में कूद करके तैरते हुए उस बच्चे को उठा लिया, उसको ला करके कोमल कोमल पत्तों को खिलाकर दिए, बड़ा किया। भरत महाराज के लाल प्यार में एक प्रकार स्नेह में प्रेम में भूल गया कि उसी का ही मानव बच्चा और यह अपना ही बालक समझ कर उसे प्यार कर, इसी तरह से प्यार करते और खिलाते खिलाते उसमें इस प्रकार भरत महाराज के तन्मय हो गए कि उनका भजन साधन धीरे धीरे छोड़ने लगा। हिरण के गुणावली में उसकी प्रशंसा में डूबा हुआ उसी में तन्मय होता चला गया। एक दिन की बात है, एक हिरण का दल आया, चलते फिरते ये घूमता चला गया और उसको देख करके वो हिरण का बच्चा जो था वो भी उस दल में गिर गया और उसमें चला गया। चले जाने से भरत महाराज को बड़ी व्याकुलता हुई, इधर उधर घूमने लगे, पता ही नहीं चला। बहुत प्रयास किए, सारा प्रयास व्यर्थ हो गया। दिन भर ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, एक पहाड़ की चोटी पर चल करके वहां से भी बहुत नजर फिराया, जब कहीं नहीं मिला अंदर में लौट के आए और बड़े दुखी हो करके चिंतन करने लगे, अहो ये हिरण कितना गुणी था, जहां पर इसका पैर पड़ता है वो जो भूमि बन जाता है, जो संसार हिरण वहां के मृत्यु परम पवित्र मानी जाती है। तो ऐसे ये हिरण था, संतु आज छोड़ करके चला। ऐसे समय में क्या हुआ, जैसे सबके लिए काम आता है तो जो जैसे चिंतन करता है, अंतिम समय में जिसकी जैसी चिंता होती है उसके सामने काल उसी रूप में आता है, आ करके उसी देश में ही उसको समाप्त कर देते। तो ये भरत महाराज जी इस तरह से हिरण की चिंता में डूबा हुआ, ऐसे समय में काल उस हिरण का देश बना करके उसके सामने आ गया। उसे देखते ही उन्हें गिर आए, वही तो हिरण आ गया और खुशी के मारे उसको जैसे ही गले में लगाया
इतने में वो हिरण नहीं था। हिरण के देश में वो काल था तो उसने अपने गांव में समा ली और भरत महाराज के शरीर छोड़ दिया। दूसरे जन्म में हिरण की चिंता करते करते शरीर छोड़ा, इसलिए दूसरे जन्म में जाकर के उसे हिरण होकर के आना पड़ा। गीता ने भी कहा है जन जन बात स्मरण भाव सजग तन से चले वरम, अंतिम समय में जो जिनकी चिंता करता है और उसकी चिंता में डूबा हुआ है और उस भाव से शरीर को छोड़ता है तो अगला जन्म वैसे ही उसे प्राप्त होता है। हम लोग संसार में आए तो इस प्रकार हम कर्म मार्ग में भ्रमण करते हैं, विषयों में हम डूबे रहते हैं। जब जो हमारा शरीर ऐसे ही छूटता है और वैसे ही हम जन्म लेते हैं। तो भरत महाराज जी पहले जन्म में कुछ भजन साधन किया था तो भजन साधन का प्रभाव रहा कि जाते स्मर बन गए, उनको पहले जन्म की याद रही। हिरण बन गया परंतु पहले जन्म की याद रही तो उन्हें बड़ा खेद हुआ कि अहो मैंने ये हिरण के पीछे आसक्त होकर अपने भजन साधन को गवा दिया और इसमें आखिर तो हम करके डूब गया तो मुझे हिरण सोच करके आना पड़ा। अब वो बड़े कष्ट का विषय है, बड़े खेत का विषय है, हमें और कहीं नहीं जाना है। एक ऋषि आश्रम में वहीं पर रहने लगी और ऋषियों के झूठन पत्थर जो कुछ खाने पीने को मिल जाए वही सब खा पी करके रहने। इसी तरह से जब हिरण शरीर हो
उनकी कथाओं का शरीर
और उन ऋषियों के स्वभाव में जो कथाएं होती बड़े शांत लगा करके इस तरह से हिरण शरीर अब छोड़ने का समय हो गया। ध्यान देखने का उसे जैसे ही पता लगा तो साथ ही साथ वहां नदी में उतर गए, पानी में उतर करके वहीं पर हर जो प्रभु की सौस्तुति प्रार्थना करने लगे, भगवान का चिंतन करने लगे, मनुष्यों की बोली में सौस्तुति करने लगे कि भक्ति का ऐसा प्रभाव उन्होंने भजन किया, इसलिए उसके मुंह से भगवान से स्फूर्ति करा दी और सरस्वती प्रार्थना करने लगी। जो हिरण शरीर में होते हुए भी मृत्यु में विवश हो जाता है मृत्यु काल में, परंतु सारे विवश करते रहे और भगवान के स्तुति प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार यह हिरण शरीर को छूटा, दूसरे तीसरे जन्म में और ब्राह्मण कुल में जाकर के जन्म हुआ। तो ब्राह्मण घर में जन्म हुआ परंतु पहले जन्म की याद रही, इसलिए जान बुझ करके और बोलना चलना बंद कर दिया, बोले कि हमें कुछ बोलना नहीं पागल कर दिया और इस तरह से जरा मुंह बंदी अर्थात बहरा गया, मुंगा देखा कि हम बोलेंगे नहीं हम सुनेंगे नहीं, इस तरह से जड़बत सुने गए पागल के लिए। और उसी तरह से धीरे धीरे बड़ा हुआ, पिता जी ने बहुत प्रयास किया कि इसको उपनयन कराकर गायत्री सिखा दें, उपनयन तो दिला दी, गायत्री सिखाने का प्रयास किया, कुछ पढ़ाने सिखाने का, पर इसके नहीं उसी तरह से गोगे की तरह बने। इस प्रकार पिता माता का जन्म देहांत हो गया, वे जब चले और उसके पश्चात उनके भाई लोग और भाई के पत्नियों ने उनको ऐसे आदर नहीं दिया, किसी तरह से जैसे तैसे रूखा सूखी रूखी सूखी रोटी बातें की कोई भी चीज जो कुछ मिला हुआ हो ऐसे कुछ उनको खाने को दे दी, जैसे जो कुछ मिल जाता है खा करके घर तुम्हारा के चुप रहे और अपने में संतुष्ट रहे, कभी किसी से कुछ बोले। इस प्रकार घर तुम्हारा को एक दिन एक खेत में लगा दिया कि खेत की बाहरदारी करो, देखिए ऐसे ही बैठे रहे खेत के तरफ भी पीट करके बैठे हुए हैं, खेतों में पशु पक्षी चल रहे हैं। इस प्रकार वहां बैठे हुए एक समय महाराज रघु कहां जा रहे थे, किसी ऋषि आश्रम में साधु संतों के आश्रम में कुछ जीवन की बातों को कुछ पारिवारिक चर्चा जीवन की कुछ जिज्ञासा उनके अंदर में थी, तो ये समस्त जिज्ञासा जानने के लिए किसी साधु आश्रम में जा रहे थे। तो राजा अब पालकी करके जा रहे थे तो कहा लोग ढूंढकर ढूंढकर जब चल रहे थे तो इतने में एक को बुखार चढ़ गया, तो कहा उनके सरदार ने कहा महाराज एक को तो बुखार हो गया हम लोग चल नहीं पा रहे हैं कैसे चल रहे, तो महाराज ने आदेश दिया जाओ हमारे इस बच्चे को कहा बेगार बैठा हुआ इसलिए बेगार को पकड़ करके लाओ। तो ये ऐसे घूमते घूमते देखा कि एक खेत में बैठा हुआ है मोटा सूटा, तो इसको पकड़ करके लाया था
लाए,
पर कंधे में पालकी को लगा दिया, बोले कि चलो पालकी को चलते रहते हैं। पर तो चलने का उनसे उसे ताल मिला मिला करके मजबूरी, और ठीक रास्ते में निकले मजबूरी खिड़कियां देख सब देख देख कर देख कर रहे, तो उसको मैं पालकी इधर उधर ढूंढने ढूंढने ये देखकर जब पालकी गिरने लगे तो उस समय मोहन जी गिरने लगे, बोले कि अरे कैसे तुम लोग चलते ठीक से क्यों नहीं चलते, ये पालकी कैसे गिर रही है। तो उस समय उनका हर उन्हें कहा कि महाराज ये जो नया आदमी आया है ये ठीक ढंग से चल नहीं रहा है, इसलिए पालकी इधर उधर हो जाती है अक्षमत। तो उस समय भगवान राजा बोले कि अच्छा तुमने खाया पिया नहीं, बहुत दुबला पतला है, बड़ा कमजोर है, इसलिए चल नहीं पा रहा है, ठीक से चलो मैं देखकर आ जाऊं, ठीक से समझना और फिर से चलो। ऐसे कहा कुछ बोले नहीं, चल चलने लगे, फिर से जैसे पालकी ढूंढने लगी, इतने में बोले कि अरे तो मुझको नहीं जानता है, मैं देखकर आ गया हूं, अभी तुम्हें मुझको डर तो दे सकता हूं, तुम क्या सोचते हो मुझसे डर नहीं है, ऐसे सारी बातें। तो उस समय भरत महाराज जी बोले जो जीवन भर मैंने बातें नहीं की, तो उस समय बोले कौन राजा कौन प्रजा, कौन मोटा और कौन पतला, कौन शासक और कौन किसको शासन करता है, इस तरह से कुछ बातें कही। इतने में राजा ने कहा रे कौन, मैं तो यही सारी बात हूं, इन्हीं सारी बातों को कुछ नहीं बुझा रहा था, बोले पालकी उतारो, पालकी उतारी नीचे आए, बाहर बाहर आकर के देखा कि उस नए व्यक्ति के गले में जनेऊ पड़ा हुआ है, सारा शरीर धूल मिट्टी से जमा हुआ है और फटे पुराने ये काला सा कपड़ा है, मेला कपड़ा है। देखकर हाथ जोड़कर बोले कि हे महाराज आप कौन, निश्चित रूप से आप कोई ब्राह्मण होंगे, कोई महान पुरुष होंगे, इस प्रकार छिपे हुए देश में आप कौन हैं, आपने जो बातें कही मेरे समझ में नहीं आया, आप होंगे जो बात करके बोले। तो उस समय भरत महाराज जी बोले कि हे महाराज इस संसार में न तो कोई राजा हमारा है, न कोई प्रजा है, न कोई किसी को शासन करने वाला है, क्यों आत्मा जो है पूरा अजय अमर है, वह नित्य सनातन है, वह नित्य रूप रूप के उवर स्वरूप है, वह नित्य किशोर स्वरूप है, परंतु उस आत्मा को भूल करके हम लोग इस शरीर में आए हुए इस शरीर को हम लोग अपना समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, और मैं समझ करके इसके अभिमान में हम खड़े थे, संसार के वस्तुओं पर सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये सब मेरे और मैं इसके भोग करने वाला, परंतु कितना भूल है लोगों को कि ये शरीर हम नहीं है, इस शरीर के अंदर में आत्मा जो है नहीं हम, परंतु जिस समय हम लोग बोलते हैं कि हमारा हाथ हमारा पैर हमारा शरीर, इसका भी हम कहते हैं हमारा दिल हमारा हाथ हमारा शरीर, परंतु अभिमान करते समय हम लोग अभिमान करते हैं शरीर में मैं पुरुष हूं मैं नारी हूं मैं युवक हूं मैं युवती हूं, इतना ही हम अभिमान कर रहे थे, परंतु ये अभिमान क्या कर रहे हैं, ये झूठ अभिमान, इस मिथ्या अभिमान को लेकर के हम संसार में आ सकते हैं और हम लोग काम क्रोध लोभ मोह और मात्र इन सब के हम नौकर बने लिए हैं, हम दिन रात उन्हीं की सेवा में लगे थे, इसलिए हम संसार में माया में फंसे थे, इस माया से यदि कोई व्यक्ति मुक्त हो जाए तब तो प्रभु की सेवा करेगा, भगवान की सेवा करने के लिए माया को त्यागना है, ये संसारी आसक्ति विषय मोह और अपने शरीर के प्रति अहंकार अभिमान को त्याग करना है, अहंकार अभिमानी व्यक्ति प्रभु का भजन नहीं कर सकता, भगवान की आराधना नहीं कर सकता, आपको कल्याण की चिंता नहीं कर सकता है, न उसकी अच्छी गति होगी, इसलिए ये आदमी न तो ये आत्मा कोई मोटा नहीं पर पतला नहीं, भूखा प्यासा नहीं, वो तो अजय अमर है। आत्मा अपहृत साधना, आत्मा में पाप नहीं है। जन्म विवस्तु विधोगा विधिधातु अपिपासो, वेदांत ने कहा है आत्मा का जरा नहीं है, आत्मा की मृत्यु नहीं है, भूख प्यास नहीं है, शोक मोह से अति सत्य काम सत्य संकल्प आत्मा है। जो कुछ संकल्प करें वो सत्य हो जाए, जो कामना करें वो सत्य हो जाए। परंतु हम संसार में पड़े हुए हैं, उसको भूल करके हम शरीर को अपराधी बन गए। इसलिए ये राजन, ये संसार जो है ये भवानी है, संसारी जंगल परत है, उसमें हम पड़े हुए हैं, इस माया में हम फंसे हुए, माया में फंस करके हम माया की सेवा में लगे हुए हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह आदि जो है ये सबके शत्रु हैं। गीता में भगवान ने भी कहा है, काम इस क्रोध इस रजो गुण समुद्र महासम महापापना विध्यन नहीं है परिणाम। ये अर्जुन ये महाशत्रु है, ये केवल एक के नहीं, ये सबके शत्रु। हम लोग अज्ञान मोह में